நஹ்மதுஹு வ நஸல்லி அலா ரசூலில் கரீம். அம்மா பஅத், அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். குலில்லாஹும்ம மாலிகுல் முல்கி துத்தில் முல்க மன் தஷா வ ஃபதன்ஸுல் முல்க மிம்மன் தஷா வ துஇஸ்ஸு மன் தஷா வ துஸில்லு மன் தஷா வ பியதிகல் கைர் இன்னக அலா குல்லி ஷைன் கதீர். ஸதகல்லாஹுல் அஸீம். قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله او كما قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ये हमने आयत नंबर 25 से आगे 26 तिलावत अभी की, इसके अंदर एक दुआ का ज़िक्र है. आप ये देखें जो हदीस हमने अभी पढ़ी है, अफ़ज़लुज़्ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद्दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कि दुनिया के अंदर कायनात में यूनिवर्स में पूरे सबसे जो बेहतरीन ज़िक्र है, सबसे जो बेहतरीन कोई वर्ड्स हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जो सबसे बेहतरीन दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह है. ये हदीस में आ रहा है. अब अगर आप सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई दुआ तो नहीं है, अगर आम बंदा माइंड से सोचे, लेकिन वह हदीस में आता है ना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दुआ सिखाई, बोला तुम लोग ऐसे दुआ मांगा करो अल्लाह अल्लाह ला उशरिकु बि रब्बी शैया, कि ऐ अल्लाह तुम्हारे आपके खिलावा कोई शरीक नहीं. तो ये दुआ है, ये सबसे बेहतरीन दुआओं में से एक ये दुआ भी सिखाई. अब दुआ आप मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उमूमन हमारे माइंड सेट में आमतौर पे क्या आता है, हम लोग कोई काम हो जाता है अल्लाह का शुक्र करते हैं, हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? तमाम तारीफ़ें जो है वो अल्लाह के लिए. अब दुआ को हम आमतौर पर माइंड, हमारा माइंड सेट क्योंकि ऐसे चलता है, हमारा माइंड सेट वो ये है कि दुआ सिर्फ जब हम कोई ना कोई बाउंटी, कोई ब्लेसिंग, कोई नेमत, कोई ना कोई अल्लाह से मांग रहे हैं, चाहे वो दुनियावी हो आखरत हो, हम जब मांग रहे हैं वही दुआ है, हमारे माइंड में ऐसे आ रहे हैं. और हदीस में आ रहा है अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेहतरीन दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुरान में आते हैं ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा और बढ़ा के दूंगा. इसलिए आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जब बंदा हर चीज़ पर शुक्र करेगा अल्लाह को, तो हमारी जो भी हमारी हाजात, जो हमारी विशेज, डिज़ायर, जो हमारी वांट्स हैं अल्लाह को, हम वो वैसे ही पता है अल्लाह को, हमें बताने की तो ज़रूरत अल्लाह को है नहीं. नाहनु अकरबु इलैही मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारख से ज़्यादा करीब हूँ, तो वो तो हमें जानता. उसका मेन, हमने जब अल्लाह की तारीफ़ की तो वो बाई डिफ़ॉल्ट दुआ हो गई, और फिर अल्लाह हमें उसके वसीले से सवाब तो आएगा, अल्लाह इतना खुश होगा कि ख़ुद ब खुद हमें देगा. अब इसको अगर माइंड में रखें तो आप ये देखें, एक वो जो रिवायत में अबू खुज़ैमा और अबू नुएम और मुसनद की आता है, एक डिटेल वाक़या है ग़ज़वा खंदक के टाइम पे, जो जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, फेमस बड़ी एक वन ऑफ द जिहाद्स में से थी जो उस वक्त के टाइम पे हुई, तीसरी जंग जो थी बदर और उहद के बाद. उसके अंदर क्या हुआ, क्योंकि तमाम जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे वो सब गैदर अब हो गए इकट्ठे, वहाँ से जूज़ ने भी कोलैबोरेशन कर लिया काफ़रों से, और सब के सब मिल के अब हमला करने लगे, तो और मुसलमान बेसिकली देवर आउट नंबर्ड. तो उन्होंने डिसाइड किया, उस वक्त सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि ही वॉज़ अ पर्शियन, वो वहाँ से आए थे, उनकी अपनी एक बहुत लंबी स्टोरी है, वो उसमें हम अभी नहीं जाते. उन्होंने सजेस्ट किया कि हमारे वहाँ पर एक ट्रेंड है, हम लोग खंदक खोद देते हैं. तो इन्होंने यही किया, ये मदीना से बाहर गनीम का इलाका है, वहाँ पे एक यूँ खंदक खोदना शुरू कर दी. उन्होंने ऑर्डर किया कि हम ये खोदेंगे ताकि दुश्मन इस तरफ आ नहीं सके. तो वो आज भी, मैं लास्ट टाइम मदीना गया था तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे हाईवे रोड पे उन्होंने खाली एक निशान बनाया हुआ है, वो क्योंकि सारी निशानियों को हटाते जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट दूर कहीं ना कहीं वो उसकी लाइन ज़रूर नज़र आती है आज भी. एनीवेज, उसमें आपने ज़ाहिर स्टोरीज में सारी डिटेल सबने पढ़ी हुई है, उसमें दस सहाबा के ग्रुप्स बनाए रबी अलैहिस्सलाम ने, और तकरीबन रफली उस वक्त जो बुकों में लिखा हुआ है कि 40 हाथ, यानी रफली कितना बनता होगा, 40 फीट के करीब बनता होगा मोर और लेस, इतनी गहरी खंदक खोदने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स किए पास. तो अब दस सहाबा डे एंड नाइट लग गए कि उनसे आने से पहले दुश्मन के हम इसको खोदते हैं. तो एक जगह पर क्या हुआ कि एक चट्टान थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वो टूट नहीं रही थी, तो उस पर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए सहाबा के, यार हम इसका क्या करें. انہوں نے عرض کیا کہ تو ٹوٹی نہیں رہی. بہرحال نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, انہوں نے وہ جو بھی اس کا تھا اوزار وہ لیا اور اس کو زور سے جب ہٹ کیا چٹان کو تو اس میں سے ایک شعلہ نکلا اور آسمان کی طرف, اور نبی علیہ السلام نے کہا مجھے اس میں ہیرا یعنی کہ جو ایران جو فارس تھا اس زمانے کا وہاں کے محلات نظر آ رہے ہیں. پھر ایک دوسرا انہوں نے ضرب لگائی جب اس چٹان کو اس راک کو تو ایک دوسرا شعلہ نکلا اور انہوں نے کہا کہ یہ اب مجھے روم کے محلات نظر آئے ہیں اس شعلے کے اندر. اور پھر تھرڈ ٹائم کیا تو دوبارہ ایک شعلہ نکلا, چٹان پوری چورا چور ہو گئی, ٹوٹ گئی, اور اس شعلے میں سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب یمن یعنی کہ سدرن ٹائپ ادھر تک کے محلات سارے نظر آئے ہیں جو پیلیسز ہیں, میننگ کہ ایک نہ ایک دن ہم یہ سب علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا, ہم اس سب پہ انشاءاللہ حکومت کریں گے. مطلب یہ تھا ظاہر ہے اس بات کا. تو یہ بات جب بعد میں مدینہ میں جو جیوس سے وہی پہنچی ان تک تو انہوں نے استضاء کیا, مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ایسے یعنی مدینہ کے تھوڑے سے لوگ ہیں اور اتنا سا ان کے پاس نہ کوئی وسائل ہے نہ کوئی وہ ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں ہم روم اور فارس اور وہاں کی سلطنتیں ہمارے کنٹرول میں ہوں گی. تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں, یہ جو آگے آ رہی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, اور آپ لوگوں کو ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس کے بعد. بہرحال انہوں نے جو مذاق اڑانا تھا وہ تو اڑایا, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم سے شروع ہوا اور پھر ابو عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم تک پورا جو پرشین امپائر تھا وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا. 90% یا 80% روم کا جو علاقہ تھا وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا, اور پھر فائنلی آگے عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم تک یہ پورا علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا, وچ از اے ہسٹوریکل فیکٹ. صرف ایک جنگ یرموک جو ہوئی تھی روم کے علاقے میں عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ, اس میں آتا ہے کہ رفلی 45,000 صحابہ تھے اس وقت مسلمان تھے فوج میں, اور تقریباً 700,000 کے قریب رومی تھے, 700,000 رومی تھے اور 45,000 یہ تھے, اور اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ 3,000 صحابہ شہید ہوئے اور رفلی 130,000 رومی فوج جو 700,000 میں سے تھی وہ وائپ آؤٹ ہو گئی. تو یہ یعنی یہ تو اللہ کے اس میں ہے, وہ تو اس لیے آ رہا ہے قل اللہم مالک الملکی, کل آپ ان سے کہیں اللہم مالک الملکی, بے شک اللہ ہی ہے مالک ملک, مالک بھی ہے ملک کا. ملک کہتے ہیں کوئی بھی سلطنت کو یا کوئی علاقے کو یا جگہ کو, تو ہر جگہ کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. تو تل ملکا ناظم بھائی, یہ تی جو ہے یہ لفظ یہ ناؤن ہونا چاہیے یا ورب ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟
یہ تا ورب ہونا چاہیے.
بالکل دیکھیں نا, کیونکہ تا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ عطا کرتا ہے ملک, دیتا ہے ملک, من تشا جس کو بھی چاہتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے, اور وہ تنزع الملک میں من تشا جس سے بھی چاہتا ہے وہ ملک چھین لیتا ہے, وہ تو عز من تشا اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, وہ تو ذل من تشا جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, بیدک الخیر اسی وکاس. یہ دیکھ دیکھیں یہ جو لفظ ہے بیدک, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟
خیر دیتا ہے
کس کو؟
کس کے ہاتھ میں چاہے؟ آپ بھی کلاس میں ہیں بھائی,
آپ کو آپ کے ہی ہاتھ میں, ہم دعا مانگ رہے ہیں نا اللہ سے, تو آپ کے ہی اللہ کے ہی ہم اللہ کو ایڈریس کر رہے ہیں, تیرے ہی ہاتھ میں ہے. بیدک کا مطلب تھا تم ایک, سنگلر اور پروناؤن ہے اٹیچ پروناؤن ہے سنگلر کاف. بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر. انکا علی کل شیء قدیر, انکا
سنگلر اور انکا علی,
تو یہ ہر چیز پر قادر. اگین کاف آ گیا نا, تو یہ ہر چیز پر قادر. क्योंकि हम ज़मीर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन में आ रही थी, यहाँ काफ दो जगह आई है अगर आप नोट करें, अटैच प्रोनाउन है और सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन एड्रेस करने वाले का खिताब हो रहा है। तो ये हम अल्लाह से क्योंकि दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ने यहाँ पे फरमाया बियदिकल खैर, खैर है। हालांकि अगर देखा जाए एक तरफ किसी सल्तनत, क्योंकि तो इज़्ज़ु मंतशा है लेकिन तो ज़िल्लु मंतशा भी तो आ रहा है। तो अगर किसी की हुकूमत छिन जाना कैसे खैर होगी या किसी को नुकसान पहुंच जाना। लेकिन बात यह है कि एक अरबी का एक बहुत फेमस पोर्ट है, शायर है, मुतनबी उसका नाम है, उसका है मसाइब कौमिन इन द कौमिन फवाइद, ये उसका शेर है। क्या मतलब कि बाज़ कौमों के लिए या लोगों के लिए जो चीज़ नुकसानदेह होती है वो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो वो कहते हैं ना प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं किसी एक के लिए जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है वही किसी दूसरे के लिए अपॉर्चुनिस्ट बन के और फ़ायदा उठा सकता है उससे। वो आपने अगर एक उस ऑस्कर शिंडलर जो था उस ज़माने में, आपने सुना होगा वो जो ज्यूस को जब नाज़ीज़ मार रहे थे या जो भी हमने स्टोरी सुनी है उसमें सही गलत जो भी है, लेकिन उस वो उसी प्रॉब्लम को मैनिपुलेट करके और कितने पैसे कमा रहा था। हालांकि जंग हो रही है तो वो जंग हो रही है, मर रहे हैं लोग दोनों तरफ, वर्ल्ड वॉर हो रही है और वो बंदा जो है वो रिच से रिच होता जा रहा है भारत। तो एक तरफ किसी के लिए जो प्रॉब्लम होगी और दूसरे के लिए वो फ़ायदेमंद भी होगी। इस वजह से बियदिकल खैर का कि किसी न किसी के लिए तो फ़ायदेमंद चीज़ होगी। नकला कुल शयन कदीर तूल जो लई लफिन नहारी वलज, कहते हैं पैदा करने को या निकालने को। तूल जो लैला फिर नहारी, तो निकालता है रात, लैल कहते हैं रात को, फिर
दिन से।
देखें लैल पे भी अलिफ लाम अल लैल है ये लफ्ज, और अन नहार अल अलिफ लाम नून हा अलिफ रा, ये नाउन्स होने की निशानी यहाँ पे आप देख लें। और तुलजुन नहार फिल लैल, जो वो निकालता है दिन से रात को देखें ऐसे अभी हम सर्दियों में जा रहे हैं, कितना इजी है इस बात को समझना। वही ये जो दिन था वो आठ, हमारे यहाँ कनाडा में साढ़े दस बजे तक इशा जा रही थी, अब मगरब आप समझ लें 8:30 तक जा रही थी। वो पीछे जाते 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 अभी नवंबर सिर्फ आया और आप देखें तो वो ऑलरेडी 6:30 बजे तक, 6:15 उससे भी पहले 6:20 समथिंग तक, 6:15 कह लें ईशा आ चुकी, मगरब आ चुकी है। तो वो दिन जो है वो कम होता जा रहा है, उसी रात में से दिन में से रात निकलती जा रही है। और यही फिर समर आना शुरू होगा जनवरी फरवरी के बाद से, आप देखेंगे वही दिन बढ़ता जाएगा और रात में से दिन निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो अल्लाह की कमाल है, ज़ाहिर है अल्लाह की है। और वैसे एक दूसरी भी इंटरप्रिटेशन है अगर आप देखें तो, जो ये यूनिवर्स है इसकी जो रियल है वो अंधेरा है, वो रात है, लैल है। और ये एक जगह आता है ना यसलकुन नहार, उसमें से अल्लाह दिन को खींचता है, यानी उस अंधेरे में अगर ये सूरज बुझ जाए या ये लाइट्स ना हो तो पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो ब्लैक आउट हो जाए और वो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होते 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 माइनस में, इतने सेवरल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइनस डिग्रीज में जाके सब ख़त्म हो जाए रातों रात। ये अल्लाह का निज़ाम है, उसमें सूरज डाला है, उसने वो रोशनी डालता है तो वो वेदर को वार्म अप करता है और अंधेरे को ख़त्म करता है। जो इन रियलिटी है यूनिवर्स वो अंधेरा है। तो ये अल्लाह की ज़ाहिर है एक मिरेकल है, उस अंधेरे में से दिन निकाल देता है, रोशनी निकाल देता है। वतुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित, इसका कोई एग्जांपल दे सकता है? तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित, हय कहते हैं ज़िंदगी को, मय्यित मतलब मौत,
ज़िंदगी में से मौत
कैसे निकालता है? एक जिंदा चीज में से एक मुर्दा चीज निकालता है, यूं तर्जुमा कर लें।
आपकी
वो भी मतलब हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे एक मुर्गी है वो अंडा देती है, मुर्गी एक हई हयात एक जिंदा चीज है, अंडा इज नॉट अ लिविंग थिंग, वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो उस जिंदा चीज में से वो मुर्दा चीज को निकाल रहा है कि इंसान है, इंसान इज अ लिविंग थिंग, उसके अंदर से स्पर्म का एक ड्रॉप है, वो नॉन लिविंग थिंग है इन इटसेल्फ। तो वो जिंदा चीज में से मुर्दा चीज नॉन लिविंग थिंग निकाल दी और फिर उसी अंडे में से जब बच्चा निकला या उसी स्पर्म से बच्चा पैदा हो गया तो वही एक मुर्दा चीज़ है, क्योंकि आगे आ रहा है तो खरिजुल मैयता मिनल हय, उसी मुर्दा चीज़ में से ज़िंदगी निकाल दी। तो ये अल्लाह का कमाल है। और जाहिर है वो मतलब भी हो सकता है कि कोई यानी इसका अगर सिंबॉलिक मीनिंग भी ले लें, कोई बंदा है वो बहुत बड़ा आलिम है, कोई फाजिल है, और उसकी औलाद है वो दो नंबर की नाफरमान और गुनाहगार निकल है, तो ये पॉसिबल है। आलिम माने इन द सेंस के वो हई है, हयात है, असल रोशनी ईमान की उसके अंदर है और औलाद नहीं है, मुर्दा है इन द वे इन टर्म्स ऑफ ईमान वो मुर्दा है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स आप देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है वन ऑफ द, जिसे अबुल अंबिया कहते हैं, उनके वालिद आज़र वो काफिर थे, मुशरिक थे, यानी वो मैयतुल हय एग्जाम्पल हो गया। या आप नूह अलैहिस्सलाम को ले लें, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था किनान, ये अब नबी हैं और ये ज़ाहिर है नबी है, ईमान से भरे हुआ इनका दिल है, और उनकी औलाद के नान जो है वो काफिर है, मुशरिक है। ये अल्लाह की कमाल है, अल्लाह की एक कुदरत है। और वहाँ पे तो इस एक्सटेंड तक जाता है जब वो आप देखें कुरान में के वर्ड्स हैं, जब किश्ती वो डूब रही थी, सिर्फ तीन उनकी वो हाम साम और याफिस उसमें थे, चौथा ये किनान नहीं आता था, ये वो पहाड़ पे चढ़ गया, कहता था मैं बच जाऊँगा इस पानी के तूफान से, ऊपर चढ़ गया। उन्होंने कहा आ जाओ, बहरहाल नहीं आया, वो गर्क हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से एक दुआ, दिल से निकला, उन्होंने अल्लाह से कहा कि ये तो मेरी औलाद था, ये इसको कोई बचाने की सूरत हो जाती। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से अर्ज़ किया तो अल्लाह ने कहा मा हाज़ा बश, ये तुम्हारी औलाद थोड़ी है, ये कुरान के वर्ड्स हैं, ये तो एक नाफरमान वो था, इसको तो तुम अपनी औलाद बोलो भी नहीं। बहरहाल खैर वो कुरान में क्यों कहा। तो एनी वेज वो मुर्दार की एक सेंस में वो बात भी हो सकती है। व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिग़ैर हिसाब, और वो रिस्क देता है मन तशाउ जिसको भी चाहता है बग़ैर हिसाब के। बग़ैर हिसाब का क्या मतलब हुआ?
बहुत ज़्यादा, उसके उसके चाहने से भी ज़्यादा, उसकी चाह से भी ज़्यादा।
इसके उलमा ने ना तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग्स लिखे हैं बग़ैर हिसाब के होने में के भी। एक तो बग़ैर हिसाब के कैसे हो सकता है कि एम्पल माल है, वो इतना है कि गिना ही नहीं जाता, जैसे कि कारून का था, मूसा अलैहिस्सलाम का जो पुपीजाद कज़न निकलता है, उसके बाद इतना माल था, इतना माल था कि वो आता है किताबों में लिखा है वो गिन गिन के थक जाता था, उसका माल ख़त्म नहीं होता था, फिर वो अल्टीमेटली उसको छोड़ता था, गिनना छोड़ देता था कि यार मैं तो इस इतना माल है कि गिन ही नहीं सकता। तो बग़ैर हिसाब के उसके बाद माल था, यानी हिसाब ही नहीं था, कोई अनगिनत माल था कारून के पास। तो एक का मीनिंग ये भी हो सकता है एम्पल माल देता है, जिसको भी चाहता है एम्पल माल देता है बग़ैर हिसाब। और दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि बग़ैर हिसाब के देने का मतलब ये है कि बग़ैर मेहनत के दे देता है। अब आप देखें बहुत से लोग हैं, कोई वर्कर है, सुबह से शाम तक वो लगा हुआ है मजदूरी करने पे, हार्डवर्क कर रहा है, लिटरली हार्डवर्क कर रहा है, और वो इतना नहीं कमाता, वो इतना भी नहीं कमा सकता कि उसकी पूरे दिन के अपना पूरा फैमिली के खर्चे पूरे हों। और कोई बंदा है वो घर बैठा रहेगा और बैठे बैठे उसके जो भी बिजनेसेस चल रहे होंगे और वो कमा रहा होगा। तो कोई बग़ैर हिसाब से होने का मतलब ये भी हो सकता है कि बग़ैर एफर्ट के वो दे दे जिसको भी चाहे, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और अब वो उस बंदे की अपनी मर्ज़ी है, वो उसको हलाल तरीके से कमाए या हराम कर ले, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि माल इन सेल्फ कमाना तो कोई नाजायज़ बात नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो अशरा मुबशरा के टॉप 10 सहाबा हैं उनमें आप देखें ना, अबू बकर हदीस में कैटेगोरिकली उनको जन्नत की बशारत दी गई, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्रा फिल जन्ना, साद बिन अबी वकास फिल जन्ना और सईद बिन फिल जन्ना। ये 10 सहाबा के नाम लेके टॉप 10 इनको कहते हैं। इनमें से आप काउंट करें, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सब वाकिफ़ हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का हमने जिक्र किया था, जिनकी विरासत में खाली उनकी 4 बीवियाँ थीं और 1/8 हिस्सा बीवी को मिलता है, चारों में डिवाइड होता है, और वो 1/8 हिस्सा जब बना तो वो 80,000 दिनार था, यानी आजकल के हिसाब से आप करें तो रफली कैलकुलेट करें तो उनकी आज कल के हिसाब से नेट वर्थ 691 बिलियन डॉलर्स के करीब बनती है। आज का रिचेस्ट बंदा जेफ बेजोस को आप देख लें, इलॉन मस्क को देख लें, या बिल गेट्स को देख लें, जो 100 बिलियन डॉलर्स क्लब्स वाले बहुत फ़ख्र से अपने आप को कहते हैं, वो अभी तक 200 को भी नहीं क्रॉस कर सके। उनकी उस ज़माने में बात कर रहे हैं, 691 बिलियन डॉलर्स उनकी नेटवर्थ बनती थी जब वो वफात हुए। और आए कैसे थे, ज़ीरो आए थे, मतलब मक्का से हिजरत करके आए थे, और एक सहाबी के साथ अंसारी रहे, और कैसे हमने डिस्कस। या दूसरे आप इसी टॉप 10 में ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अनु को देख लें, वो खुद नेट से जो कि नबी अलैहिस्सलाम के देन अगेन पेटर्नल कज़न थे, फूफीजाद भाई थे, और उनके बारे में आता है उनकी भी यही हालत थी। लेकिन जब वो उनकी जब वो शहीद हुए तो उनकी सारे माल का उन्होंने अंदाज़ा लगाया, उसमें घर बागात और जो भी माल दौलत था सब मिला मलू के उन्होंने देखा कि रफली 6 करोड़ यानी 60 मिलियन दिनार के करीब बनता था उनकी नेटवर्थ जब फाइनली अंदाज़ा लगाया गया। तो ये जो सहाबा थे, ये टॉप 10, ये तो नहीं था कि ये लोग ईमान पे नहीं थे या नाऊज़ु बिल्लाह ये लोग कोई मेहनत उस पर नहीं कर रहे थे, दीन पे अलग मेहनत थी, लेकिन माल कमाने इटसेल्फ क्योंकि मना नहीं है तो उस पर भी लगे हुए थे, और वो हलाल तरीके से कमा रहे थे। तो बग़ैर हिसाब का मतलब ये है कि बग़ैर मेहनत के भी अल्लाह जिसको चाहे देगा, जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा। बस ये इंसान की अपनी मर्ज़ी है, वो उस हलाल को हराम तरीके से कर ले या हराम को हलाल कर ले, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। वो दूसरी फॉर्म में है, यहाँ पे उसका मीनिंग खाली हम क्योंकि बग़ैर हिसाब का कर रहे हैं, वो एक अलग है, आजमाइश है इन द सेंस बिल्कुल है, लेकिन उसमें भी एक थर्ड मीनिंग भी बग़ैर हिसाब का निकलता है ना, वो ये हो सकता है कि माल तो अल्लाह देगा और हिसाब भी नहीं लेगा, वो भी बग़ैर हिसाब का ये भी मीनिंग हो सकता है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब आता है, अल्लाह ने कहा था हाज़ा इंदना, ये हमारी तरफ से है, मैं ना अमसिक, जितना मर्जी है खर्च करो, जितना मर्जी है रोक के रखो अपने पास, बेशक होर्ड करके रखो, कोई तुमसे पूछ गछ ही नहीं है, तो ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। ये तीनों फॉर्म में बग़ैर हिसाब हो सकता है किसी तरीके से भी, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है यहाँ हम रुक जाते हैं, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे टॉपिक चेंज हो जाएगा फिर। और हाँ, फाइनली एक इमाम बगवी रहमतुल्लाह ने जो पहले हमने एक हदीस कोट की थी, आयत नंबर पीछे गुजरी थी ना, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकातु वल मुकीमीन बिल क़िस्त, जी 18 नंबर आयत नंबर 18। तो वो इमाम बगवी रहमतुल्लाह ने जो हदीस नकल फरमाई है उसमें यही लिखा हुआ है कि जो शख्स भी हर फर्ज नमाज के बाद सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और फिर ये तीन आयत पढ़ेगा, एक ये शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला इल्ला आखिर आयत से लेकर एक ये आयत और फिर ये दो आयतें कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुल मुल्क मन तशा से लेकर बग़ैर हिसाब तक, ये दो आयतें जो शख्स भी हर फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ेगा, ये तीन आयतें, तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उसको अल्लाह उसके लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देगा, और फरिश्तों से कहेगा इसे जन्नत में दाखिल कर दो, और उसकी हर रोज़ 70 हाजात पूरी होंगी, और जिनमें से मिनिमम ये होगा कि उस शख्स की मगफरत होगी। तो ये इन दो आयत का आयतों का ज़ाहिर है अपना एक दर्जा और मकाम इस सेंस में। 18वीं आयत नंबर 18 है, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकातु वलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये दो आयतें जो आज हमने पढ़ी हैं और पीछे जो 18वीं आयत गुजरी है, जो हर फर्ज नमाज के बाद ये तीनों आयतें पढ़ेगा, तो इसका बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम ज़ाहिर है, अल्लाह ने बयान फरमाया है और हदीसों में आता है। तो ज़ाहिर है हम सबको कोशिश करनी चाहिए ये कम से कम तीन आयतें हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ लें। और हमने एक चीज़ और भी उस पिछली आयत में जिक्र कर चुके हैं बहरहाल, के जब भी ये पढ़ते हैं शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा ये आयत, तो उसके बाद अना अला ज़ालिका मिन अश्शाहिदीन, ये नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मैं भी इस चीज़ पर गवाऊँ, क्योंकि वो उस आयत की खैर तफसीर में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।